समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत कुमार राय। प्रशांत, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम प्रशांत कुमार सिन्हा एंड विथ मी टुडे इज माय को होस्ट करिश्मा। एंड लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
नए जीएसटी सुधार आज आधी रात से लागू होंगे। लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है।
न्यू जीएसटी रेट्स टू कम इनटू इफेक्ट मिडनाइट टुनाइट, रिड्यूस्ड रेट्स अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू ब्रिंग रिलीफ टू कॉमन मैन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मोरक्को की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे।
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिमांड्स टू रीगेन कंट्रोल ओवर बागराम एयरबेस इन अफगानिस्तान, तालिबान रिजेक्ट।
देश के विभिन्न हिस्सों में आज महालया का त्योहार मनाया जा रहा है।
एंड इन स्पोर्ट्स, आनंद कुमार बेलकुमार बैग्स गोल्ड इन 42 किलोमीटर मैराथन एट वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप्स इन चाइना। And now, listeners, time for our segment, Dateline India. Today, we will talk about the International Day of Peace. The International Day of Peace, also known as World Peace Day, is celebrated every year on the 21st of September. It was first established by the United Nations in 1981 to promote peace and to encourage people to stop violence and conflict. Karishma, in 2001, the UN declared it a day of global ceasefire and nonviolence. This day is a reminder that peace is not just the absence of war. It means safety, respect and kindness in our daily lives. Listeners, this day is dedicated to enhancing the global understanding of peace. True peace involves more than just ending conflicts. It requires raising public awareness about violence through education and fostering a culture of harmony and mutual respect amongst people.
वहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एक शांतिपूर्ण और स्थायी समाज के निर्माण हेतु विश्वव्यापी एकजुटता की आवश्यकता को मान्यता देता है। इस दिवस का मूल लक्ष्य शांति की खोज को आगे बढ़ाना है। ये आयोजन विभिन्न पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के लोगों को वैश्विक शांति की अवधारणा पर विचार करने के लिए एक अनुशासनात्मक के रूप में कार्य करता है और विश्वास, समावेशिता और सहयोग समाजों के भीतर और राष्ट्रों के बीच शांति के परिणाम है। व्यक्तियों का सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने का उद्देश्य है। यह उन सभी लोगों के प्रयासों को मान्यता देने का उत्सव है जिन्होंने शांति की संस्कृति का निर्माण किया है और कर रहे हैं।
This International Day of Peace serves as a reminder of the necessity of global peace and an end to conflicts. It is a day set aside to raise awareness about peace-related topics, to advocate for peace-building initiatives, and to promote unity amongst people and nations. The day emphasizes the United Nations commitment to establishing global peace and urges individuals, communities, and governments to work together to resolve conflicts and to create a more peaceful world.
दुनिया भर के राष्ट्र और समुदाय गरीबी, बीमारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कहीं से भी आए हों, कोई भी भाषा बोलते हों, हम एक दूसरे से ज्यादा भिन्न नहीं हैं। यह हमें खुद से बड़ी किसी चीज पर विश्वास करने की याद दिलाता है। हम रोजमर्रा के काम और परिवार में उलझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी यह सोचना भी अच्छा होता है कि समुदायों और राष्ट्रों को अपने सहज दायरे से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें शांति तभी मिल सकती है जब हम दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करें या यूं कहूं कि उनके जूते पहनकर खुद देखें.
Listeners, it demonstrates that small actions can make big impacts. We can all contribute to the worldwide culture of peace, be that through prayer, advocacy, education, and respecting others. If each of us did one small thing to bring about peace, even each week, think of the global impact this would have. The formula also contains a multiplier effect because as peace increases, money spent containing violence can instead be used on more productive activities which drive growth and generate higher monetary and social returns. Substantial economic improvements are linked to improvements in peace. Therefore, every government in the world should involve themselves for improving peaceful environment. Positive peace is even more beneficial than negative peace, which is simply the absence of violence or the fear of violence. Positive peace involves fostering the attitudes, institutions, and structures that create and sustain peaceful societies. People around the world mark this day with events like peace marches, art exhibitions, school activities, and community gatherings. The theme for this year of the Global Peace Day is Act Now for a Peaceful World. It is a time to reflect on how we can build a better world through understanding and cooperation. Guided by the mantra of Seva and Sushasan, that is public service and good governance, the government under Prime Minister Narendra Modi has been working tirelessly to bring transformation and progress. Today, in this special series, Seva Parv, we bring to you how the Modi government has led the UPI revolution, making digital payments seamless, secure, and accessible for all.
Under Prime Minister Narendra Modi, India has witnessed a profound transformation driven by technology. At the heart of this transformation is UPI, the Unified Payments Interface. Launched in 2016 by the National Payments Corporation of India, UPI has revolutionized the nation's payment ecosystem by integrating multiple bank accounts into a single mobile application. The system enables seamless fund transfers, merchant payments, and peer-to-peer transactions. In his Independence Day address this year, Prime Minister Narendra Modi spoke about the power of UPI.
UPI ka hamara platform aaj duniya ko ajoba kar raha hai. Hamare mein samarthya hai. Real-time transaction mein 50% akela Bharat UPI ke madhyam se kar raha hai.
The scale of UPI today is remarkable. In August 2025 alone, UPI has crossed 20 billion transactions. A juice vendor from Delhi, Rohit, hailed the features of the UPI, saying that it has made money transactions seamless and reduced the dependency to visit the banks.
जब से यूपीआई आया है तब से हम लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है क्योंकि यूपीआई से ना केवल हमारे को बैठे बैठे पेमेंट मिलती है उल्टा हमारे कहीं भी भेजने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता ना हमें बैंक जाना पड़ता पैसा हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आता है टाइम सेविंग होता है बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के युग में बिना यूपीआई के ट्रांजैक्शन लेन देन व्यापार कुछ भी पॉसिबल नहीं है यूपीआई के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इसी ने ही हमारे जीवन में एक नया मोड़ दिया है बदलाव दिया है
India's digital payments revolution is now gaining international momentum. Currently, UPI is operational in countries including UAE, Singapore, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, France, and Mauritius. By offering a seamless, secure, and accessible platform for both individuals and businesses, UPI has played a pivotal role in promoting financial inclusion and accelerating the nation's shift towards a cashless economy.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म चलो जीते हैं देश भर के लाखों विद्यालयों और सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है. यह फिल्म प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की बचपन की एक घटना से प्रेरित है. यह फिल्म एक छोटे से बालक नारू की कहानी है जो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से प्रभावित होकर अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करता है. और अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से.
मंगेश हदावले द्वारा निर्देशित और आनंद एल राय और महावीर जैन द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म को 2019 में पारिवारिक मूल्यों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दिल्ली में इस फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल होने के बाद आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए गौरव सियाल ने कहा कि इस दिल को छू लेने वाली फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की सच्चाई को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली है।
दिल को छूने वाली मूवी थी और बहुत ही आनंद आया मूवी को देखकर। अपने जीवन में इस तरह के लिए मैं इस मूवी से ये सीखता हूँ कि मुझे जो भी मैंने इस मूवी में देखा है वो मैं अपने जीवन में इसको उतारूंगा।
वहीं एक अन्य दर्शक नंद किशोर ने कहा कि यह फिल्म संदेश देती है कि हमें दूसरों की मदद करने और उनके लिए त्याग करने के लक्ष्य के साथ जीना चाहिए।
ये मूवी देखकर ऐसा लगा कि जैसे मन में आता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म को स्वामी विवेकानंद के दर्शन और आदर्शों के प्रति एक सिनेमाई श्रद्धांजलि बताया है। इसका विशेष पुनः रिलीज इस महीने की 17 तारीख को शुरू हुआ जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। समर्थ और सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, दिल्ली।
आइए अब हमारे संवाददाता से फिल्म चलो जीते हैं पर छत्रपति संभाजी नगर के लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनते हैं।
छत्रपति संभाजी नगर के 2 मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म दिखाई जा रही है। लोग बड़े कौतूहल से अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाने के लिए ला रहे हैं और लगभग 1.5 घंटे की इस फिल्म को देखने के बाद अत्यंत प्रभावित होकर लौट रहे हैं। ऐसे ही एक शहरी मनोज वैद्य ने अपनी भावनाएं आकाशवाणी के साथ साझा की।
आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ था कि मुझे आज इतनी अच्छी शॉर्ट फिल्म प्रेरणादायी फिल्म देखने को मिली। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे और ये फिल्म में शुभ में जिनका नाम है ऐसे अपने पंतप्रधान माननीय जी नरेंद्र जी मोदी इनके कुल जीवन के ऊपर ये फिल्म थी और इसमें ये संदेश दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी आज इतने बड़े पद पर जो है और उन्होंने आज जो देश के लिए मेहनत कर रहे उनके बाल मन पर जो परिणाम हुए स्कूल जीवन में जो कि उनको हमेशा किताबें पढ़ने की जो आदत थी उन आदत से उनको समाज में जो विषमता थी वो उनको गहराई से देखने को मिली। उसी वजह से वो देश के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है अगर ये फिल्म हर स्कूल में अगर दिखाई गई तो आने वाले 10-20 साल बाद इतना अच्छा परिणाम इतना बड़ा परिवर्तन इस भारत देश में हो सकता है और सही में स्फूर्तिदायक और बहुत ही भावनाशील ऐसी ये फिल्म थी। स्कूल के बच्चों ने तो जरूर ये सब देखना चाहिए।
जैसा कि मनोज जी ने बताया बच्चों को देशभक्ति के संस्कार देने में ये फिल्म सहायक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजी नगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
Listeners, the festival of Mahalaya is being observed in different parts of the country today. Mahalaya marks the end of Pitru Paksh Shraddh and the beginning of Durga Puja festivities. Mahalaya is considered to be the day goddess Durga defeated the demon Mahisasur. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah have extended their wishes on the occasion. Let's hear more on this from our Kolkata correspondent.
Mahalaya heralds the beginning of Durga Puja festivities for the Bengali community as the Devi Paksha follows the end of Mahalaya. People throng at the ghats of the rivers and ponds to pay homage to their predecessors, which is known as Tarpun. The dawn began with Akashvani Kolkata's iconic Mahishasur Mordini collection of mantras and songs rendered in the iconic voice of Birendra Krishna Bhadra.
Dharanir Vahirakashi Antarita Meghamala प्रकृतिरंतराकाशे जागरित ज्योतिर्मयी जगन्माता रागमन वार्ता आनंदमयी महामायार पदध्वनि।
Commemorating the mythical moment when goddess Durga was invoked to descend to earth and vanquish the demon king Mahishasura, a powerful symbol of the triumph of good over evil. Sandipan Dashgupta, Kolkata.
वहीं कच्छ के पर्यटन विकास को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाले रणोत्सव के कारण आज धुराडो गांव देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया है। पर्यटन की दृष्टि से अग्रिम पंक्ति में आने वाला यह गांव अब 100% सोलराइजेशन के साथ गुजरात का चौथा सोलर विलेज बन गया है।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में मान्यता प्राप्त धोरडो गांव को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत 100% सोलराइज किया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान धोरडो सोलर विलेज का ई लोकार्पण किया। मेहसाणा के मोटेरा, खेड़ा के सुखी और बनासकांठा के मसाली गांव के बाद धोरडो अब गुजरात का चौथा सोलर गांव बन गया है। धोरडो गांव के सरपंच मियां हुसैन ने बताया कि गांव के घरों में सोलर रूफटॉप लगने से लोगों का बिजली बिल न्यूनतम हो जाएगा और ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार की सब्सिडी और बैंक की ऋण सुविधा के चलते ग्रामीणों को यह कार्य बहुत ही कम खर्चे में पूरा हो गया, जिससे गांव में खुशी की लहर है।
मेरा गांव धोरडो 100% पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ चुका है, जिसके ऊपर हर घर के ऊपर सोलर पैनल लग चुका है और 81 जगह पे सोलर पैनल लग चुका है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का आभारी है, जिन्होंने ऐसी योजना निकाली जिससे में लोगों को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत धोरडो गांव के 100% आवासीय बिजली कनेक्शनों को सोलराइज किया गया है। इस परियोजना से राज्य की सोलर रूफटॉप क्षमता में वृद्धि होगी और गांव के घर बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत धोरडो के 81 आवासीय घरों के लिए कुल 177 किलोवाट की सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की गई है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भुज से परेश मारू।
Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis today flagged off the Namo Yuva Run 2025 for Nasha Mukt Bharat organized by the Bharatiya Janata Yuva Morcha Mumbai. Let's hear more on this from our Mumbai correspondent.
As part of celebration of Prime Minister Narendra Modi's 75th birthday, the Bharatiya Janata Yuva Morcha in Mumbai today organized a historic Namo Yuva Run. The 5-kilometer run held at the iconic coastal road promenade in Worli was dedicated to the national campaign for a drug-free India as part of ongoing Seva Pakhwada initiative. More than 7,000 enthusiastic participants, including youth, students, citizens and fitness enthusiasts, came together to run for a cause, pledging their commitment to building a drug-free Mumbai and a drug-free India and supporting Prime Minister's vision of a Nasha Mukt Bharat. The event was flagged off by Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Several prominent personalities were present on the occasion, including BJYM National President and Member of Parliament Tejaswi Surya, Padma Shri awardee and veteran actor Ashok Sharaf, and actor and fitness icon Milind Soman. BJYM Mumbai also contributed 10 lakh rupees to the Chief Minister's Relief Fund, reaffirming their commitment to de-addiction and social upliftment. For Parikrama, this is Prarthana from Mumbai.
And from Mumbai, we are now moving to Leh. Union Territory of Ladakh has achieved several milestones in digital connectivity despite the challenging terrains of nature there. More from our Leh correspondent.
Ladakh has 193 gram panchayats spread in a total area of 59,146 square kilometers, and all the gram panchayats are connected under BharatNet. Lieutenant Governor Kavinder Gupta, during a recent Digital Innovation Summit under the theme of Digital India, Powering Progress with Purposes in Leh, also said UT administration is working on OFC expansion with the cause of 125 crore expenditure in all the panchayat. Highlighting digital connectivity in rural Ladakh, Lieutenant Governor also said mobile phone connectivity for entire villages of Ladakh are in the final stage of saturation, as 234 villages out of the total 243 villages have mobile phone network. 169 villages are connected with 4G network. To strengthen the border areas through digital connectivity, the proposal for installation of 175 new more mobile towers have recently got sanctioned. Apart from digital connectivity in rural areas, digital transformation in other sectors have started in Ladakh. Land records are being digitized under the Digital Land Records Modernization Program, DILRMP, and almost all the public services are online through e-offices, scholarship, digital certificate, cashless payment, and vehicle tracking for transport safety. Yangchan Dolma for Parikrama from
Lelada. और श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Yes, listeners, India and Pakistan are set to renew India's cricket's fiercest rivalry tonight in the Super 4 stage of the DP World Asia Cup 2025 at the Dubai International Stadium. The match between India and Pakistan begins at 8 p.m. India time. A report.
India go into tonight's Super 4 clash with a dominant record against Pakistan in T20 International. 11 wins from 14 matches, including the commanding 7-wicket victory in the Group A match on September 14th. The road to this stage has been contrasting. India cruised through the Group A unbeaten, while Pakistan scraped into the Super 4s with a win over UAE. For India, a win tonight put directly to the September 28th final. For Pakistan, it's a symbol they must win to stay alive in the tournament. The build-up has carried its share of controversy. PCB chief Mohsin Naqvi demanded the removal of match referee Andy Pycroft over what he called interference in the toss process in the last match. But ICC has stood firm and Pycroft will remain in charge for this high-stakes showdown today. Conditions at the Dubai International Stadium looks perfect for cricket. Clear skies, temperatures hovering around 35 degrees Celsius and little chance of dew. The pitch is expected to favour batters and history leans in India's way, having won 6 of the 10 T20 internationals at this venue. This is Vinod Kumar from Dubai.
वहीं भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 42 किलोमीटर की मैराथन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। चीन में आयोजित इस चैंपियनशिप में आनंद ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। आनंद कुमार 1000 मीटर में 1 मिनट 24.92 सेकंड के रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण और 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीतने के कुछ ही दिनों के बाद भारत के पहले स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियन बन गए। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ आनंद कुमार ने भारतीय स्पीड स्केटिंग को विश्व मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। और श्रोताओं अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember the great Indian freedom fighter and former chief minister of Saurashtra in the present-day Gujarat, Uchang Rai Navalshankar Dhebar. Even Dhebar was born on this day in 1905 in a hamlet near Jamnagar.
Under the influence of Mahatma Gandhi, Dhebar gave up his legal career to join the Indian independence movement in 1936 in his hometown, Rajkot. Dhebar led the Satyagraha in the princely state of Rajkot between 1938 and 1942 and actively participated in the individual, Satyagraha and Confederation movement.
For his role in the Indian independence movement, he was imprisoned thrice by the British colonial government. Most of the princely rulers engaged in the policy of high taxation, imposing a heavy economic burden on the populace while ignoring the interest of the people.
The British provided them immunity from domestic and external aggression, and in return, the princely rulers used to support the British imperialistic policies, thereby acting against the development of nationalist sentiments. With nationalistic movement rising in India and many revolutionaries fleeing British authority and coming to the princely states in the first and second decades of the 20th century, pro-independence movement also gained ground in the princely states.
Dhebar emerged as one of the most prominent freedom movement leaders in the princely state of Rajkot.
Creation of United Saurashtra. In October 1947, when the Nawab of Junagadh tried to integrate the state of Junagadh into Pakistan, Dhebar led the movement from front and declared a total economic boycott, forcing the ruler of Junagadh to go underground.
Later, the boycott method was used by other smaller states, prompting intervention by the Indian government. Thus, with the efforts led by Dhebar, freeing the powerful Junagadh state from the grip of its autocratic ruler, the path towards a much larger confederation of states became possible. Saurashtra, comprising of total of 202 princely and administrative states, was formed as a state in the Union of India on 15 February 1948, and Dhebar was appointed as state's first chief minister on the same day.
Talking exclusively to All India Radio, noted Gandhian Anamik Shah shared his thoughts about the heroic struggle led by UN Dhebar.
Dhebar bhai ne kanuni vyavastha ke antargat shant kranti karke लैंड रिफॉर्म किए और जो खेती करते हैं उनको ये जमीन मिले ऐसा प्रावधान किया। तो उन्होंने जिनके पास खेती की जमीन है उनके लिए लैंड मॉर्गेज बैंक बनवाया और ये सौराष्ट्र लैंड मॉर्गेज बैंक आज भी चल रही है और बैंक ने जो कृषि लोगों को कर्ज लेना था उनको बैंक से मिलता था, जमीन के सामने ऊंचे व्याज पे बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
In 1973, he was awarded India's second highest civilian honor, the Padma Vibhushan Award. We salute the undying spirit of love and sacrifice of this great freedom fighter.
It was on this day in 1949 that the Maharaja of Manipur, Bodh Chandra Singh, signed merger agreement with the Union of India. And as a result of the agreement, the Manipur state merged into the Indian Union as a Part C state with effect from 15th October 1949.
Later, the state was given a substantial measure of local self-government under the Territorial Councils Act of 1956, a legislative body and Council of Ministers in 1963 and full statehood in 1972.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar with AIR News.
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा को जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुबैदा बेगम धनराजगिर की। जुबैदा का जन्म 1911 में एक रईस मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता हैदराबाद के एक कुलीन जागीरदार थे और बचपन से ही उन्हें अभिनय का काफी शौक था। 1920 के दशक में उन्होंने एक मूक फिल्म में काम किया और भारतीय सिनेमा के इतिहास में जुबैदा का नाम इसलिए भी खास है क्योंकि वे देश की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा की नायिका थी।
जे खुदा के नाम पे प्यार ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले दे।
तो ये वो फिल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा को आवाज दी और जुबैदा इस ऐतिहासिक बदलाव की प्रतीक बन गई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपनी सादगी, अभिव्यक्ति और अभिनय से दर्शकों को काफी प्रभावित भी किया। जुबैदा जी का जो व्यक्तित्व था वो रॉयल ठाठ और संवेदनशीलता था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने अभिनय से दूरी बना ली और सिनेमा में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। उनके जीवन पे आधारित फिल्म जुबैदा 2001 में आई थी जिसमें करिश्मा कपूर ने उनकी भूमिका निभाई।
मैं अलबेली घूमू अकेली, कोई पहेली हूँ मैं, हाँ मैं अलबेली घूमू अकेली, कोई पहेली हूँ मैं, पगली हवाएं मुझे जहाँ भी ले जाए, हवाओं की सहेली हूँ।
तो 21 सितंबर 1988 को जुबैदा जी का निधन हुआ था, लेकिन भारतीय फिल्म इतिहास में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं सिनेमा जगत के युग पुरुष ताराचंद बड़जात्या को। उन्हें फिल्म उद्योग में सेठ जी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 10 मई 1914 को राजस्थान में हुआ था और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आर्थिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई बीच में छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने मोती महल थिएटर में फिल्म वितरण के क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया और इसके साथ ही 1962 में उन्होंने फिल्म निर्माण की दिशा में कदम रखा और आरती के जरिए निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की। फिल्म आरती की सफलता के बाद बतौर निर्माता वह फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। तो इसके बाद उन्होंने दोस्ती फिल्म बनाई जिसमें अभिनेता संजय खान को प्रस्तुत किया गया। इस फिल्म का गीत चाहूंगा तुझको मैं सांस सवेरे आज भी श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय है।
चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे।
Listeners, today is the birth anniversary of renowned English writer Herbert George Wells, or as our listeners would be more familiar with, H.G. Wells. His most notable science fiction works include The Time Machine, which he wrote in 1895, which was his first novella. His other works include The Invisible Man, The War of the Worlds, and the military science fiction The War in the Air of 1907.
और इसके साथ ही आज भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार का भी निधन हुआ था. उनकी पुण्यतिथि है राजू श्रीवास्तव.
जयपुर की फ्लाइट बहुत छोटी फ्लाइट है, 30 मिनट की फ्लाइट है दिल्ली जयपुर, वहां भी अनाउंसमेंट करी.
तो राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत मिमिक्री से की थी, और जहां अलग अलग थिएटर में वो अमिताभ बच्चन के मिमिक्री करते थे, उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के साथ भी टीवी के हास्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था. तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. नमस्कार.
नमस्कार.